بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم ہماری کتابوں میں ایک بات لکھی ہے جو پہلے دور کے بزرگ تھے صلحاء تھے اللہ والے تھے یا وہ جو اللہ والوں سے سیکھنے جاتے تھے اللہ 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 کرنے جاتے تھے وہ آمین کے وقفے کا بہت انتظار کرتے تھے کہ کب میری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملے اس لمحے کا بہت انتظار کرتے تھے اور اس لمحے کی بہت زیادہ تحقیق کرتے تھے اور اس لمحے کا بہت زیادہ ان کے ہاں اہتمام تھا اہتمام بہت زیادہ اہتمام تھا کہ کون سا لمحہ ایسا ہے کہ جب امام سورۃ فاتحہ میں ولدعالین کہے اور میں آمین کہوں اور وہ دراصل میں آمین نہیں کہہ رہا اس آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین شامل ہو رہی ہے اور جس آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین شامل ہو جائے اس کی قبولیت محبوبیت مقبولیت میں کوئی شک نہیں انشاءاللہ اس آمین کا بہت انتظار کرتے تھے اور ایک یاد رکھیے گا لفظ آمین محدثین فقہا علماء نے اسم اعظم کی تحقیق کی ہے آصف بن برخیہ جو سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا آپ نے ایک بہت بڑے دیو جن سے ابھی کون ہے جو بلقیس ملکہ کا تخت لے آیا اس نے کہا جی اتنی دیر لگے گی لے آؤں گا انہوں نے نا مجھے تو اتنی دیر میں نہیں چاہیے آپ کا ایک درباری بیٹھا تھا اس نے کہا جی کہ مجھے اگر اجازت نہیں ہے خدمت میں کر سکتا ہوں تو پوچھا کتنی دیر میں کہا کہ پلک جھپکتے ہوئے اب آپ پلک جھپکے کوئی دیر لگتی میرا میں نے گھڑی ملائی تو پلک جھپکنا ایک سیکنڈ ہے آپ محسوس کریں نا موبائل پہ ایک سیکنڈ آگے پہ آگے ہو رہا ہو رہا ہو رہا اس نے کہا جی پلک جھپکتے ہی میں اس ملکہ کا تخت لاؤں گا جس کی اطلاع خود ہود نے دی وہی تو دیر سے کیوں آیا انہوں نے کہا سرکار کوئی واقعہ دیکھا میں نے عجیب و غریب انسان کا بچہ بن سیدھی سیدھی بات کر کہاں گیا تھا انہوں نے ایسے ایسے واقعہ دیکھا ایک ملکہ ہے بڑا اس کا ملک ہے مال ہے تخت ہے حکومت ہے اقتدار ہے پلک چھپکتے ہی میں وہ تخت لاؤں گا اور وہ لے آیا اور قرآن کہتا ہے اس کے پاس اللہ کا ایک علم تھا وہ علم کیا تھا وہ اسم اعظم تھا آہین اشراحین وہ اسم اعظم تھا عبرانی زبان کا لفظ میں نے کہا ہے وہ اسم اعظم تھا اور اس اسم اعظم کی برکت سے وہ خیریں ملی اس کو اس اسم اعظم کی برکت. محدثین نے, مفسرین علماء نے جو اسم اعظم کی تحقیق کی ہے, فلاں علم میں فلاں اسم میں اسم اعظم ہے, اور اسم اعظم وہ چیز ہے کہ یوں کہو اور ہو گیا, بس پل بھر میں فیصلہ کن طاقت اور فیصلہ کن لفظ اور فیصلہ کن لمحہ اور فیصلہ کن بات. تو اس میں یہ لفظ آمین بھی اسم اعظم میں شامل ہے. بہت سے بزرگوں کا, اولیاء صلحاء کا یہ تجربہ ہے کہ اسم اعظم میں آمین کی بڑی تاثیر ہے اور بہت طاقت ہے. کہ آمین اسم اعظم ہے, آمین اسم اعظم ہے. اس لیے جتنے بھی اللہ والے تھے وہ سورت فاتحہ کو توجہ سے سنتے تھے اور پھر انتظار کرتے تھے کہ اب سورت فاتحہ کے بعد فرشتوں نے آمین کہنی ہے. تو کیا فرشتوں کی آمین سنائی دیتی ہے؟ دیتی ہے. سورت فاتحہ کہنی ہے, سورت فاتحہ کی بانگ نہیں دینی. تو پھر سورت فاتحہ کے بعد آمین کہنی ہے دل ہی دل میں. یہ جو آمین ہماری آمین ہے, ہماری آمین ہے, اس آمین کا اور اس آمین کا آپس میں ہوتا ہے جوڑ. کون سی آمین؟ فرشتوں کی آمین, اور ادھر نمازیوں کی آمین. اب جب جوڑ ہوتا ہے, اب میں بتاؤں اس جوڑ کا. کمزور ضعیف آدمی چل نہیں سکتا, اسے کوئی پکڑ کے چلا رہا تو چلتا جاتا ہے. بچے کی رفتار ایک اپنی رفتار ہے, آپ بچے کی انگلی پکڑیں, بچہ آپ کی رفتار آپ کی سپیڈ پہ چلے گا, آپ کی رفتار پہ چلے گا, بچہ آپ کی رفتار پہ چلے گا. جیسے آپ کی رفتار ہے بچہ بھی ویسے چلے گا. آپ نے اپنی آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا دیا. نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں, نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. آپ نے اپنی فرشتوں کو, اپنی آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا دیا, بس یہیں کام بن گیا, بس کام بن گیا. کبھی بھی رکعتوں میں کھڑے ہوئے وہ فرض ہے یا تراوی ہے, کبھی بھی غافل نہ ہوں اور ایک پل میں بس انتظار میں رہیں کہ یوں امام سورت فاتحہ ختم کرے اور میں امام کی سورت فاتحہ کے ساتھ دل ہی دل میں آمین کہہ دوں. ادھر فرشتوں نے کہا, ادھر میں نے کہا, فرشتوں اور آمین, میری آمین, اب یہ دونوں بن گئے نجیب الطرفین, دائیں بھی برکت بائیں بھی برکت, اور میرا کام بن گیا اور میرے مسائل حل ہو گئے اور میری مشکلیں دور ہوں گئی اور میری الجھنیں سلجھ گئیں. اس آمین کی طاقت سے, اس آمین کی تاثیر سے بہت بڑا مبارک عمل ہے اور بہت بڑا معتبر عمل ہے اگر کوئی شخص اس پہ تھوڑی سی توجہ کر لے. بہت مبارک عمل ہے اور نہایت معزز عمل ہے. دیکھو ایک بات بتا دو, دوران نماز رب کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اور دوران نماز جو قبولیت کی گھڑی ہے اس کو ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں. ہر قبولیت کی گھڑی پہ ایک شیطان مسلط ہے. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جب دعا بندہ شروع کرتا ہے تو ایک شیطان مسلط ہے, وہ کہتا ہے جلدی کر جلدی کر جلدی کر, قبولیت کی گھڑی ہے. وضو ایک خاص قبولیت کی گھڑی ہے, وہاں ایک شیطان مسلط ہے, وہ کہتا ہے وضو جلدی کر یہ نہیں ہے کہ ٹوٹی کھول کے بیٹھا رہے, نل کا بیٹھ رہے, پانی بہ رہا بہ رہا بہ رہا, نہیں. وضو کرنے سے جلدی سے مراد یہ ہے, وہ کہتے بس اس کو کر ہی نہ, بس الٹا سیدھا کر کے. اسی طرح ہر قبولیت کے لمحے پہ ایک شیطان مسلط ہے, اور وہ شیطان اپنی شیطانی دکھاتا ہے. سورۃ فاتحہ کے درمیان کا جو لمحہ ہے, اختتام کا جو لمحہ ہے, یہ قبولیت کا لمحہ ہے. اب اس پہ شیطان کہتا ہے کہ بس جلدی آگے چل, حالانکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے, قبولیت کا لمحہ ہے, قبولیت کی ساتھ ہے, قبولیت کا قدم ہے, اور قبولیت کی مہریں لگنی ہیں اس پہ. اب تو آمین کہ اور تیرا کام بن گیا. اور کہہ اس وقت جس وقت سورۃ فاتحہ ختم ہو, اس کے بعد تو ہزار دفعہ کہے, لاکھ دفعہ کہے, آمین ہر دفعہ کہے, تیری ہر آمین پہ انشاءاللہ خیر و برکت ہے. پر جو اس وقت کی آمین ہے وہ کسی اور وقت کی آمین نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس وقت فرشتوں کی آمین کے ساتھ تیری آمین مل رہی ہے. جو اس وقت کی آمین ہے وہ کسی اور جگہ کی آمین ہو نہیں سکتی. یہ ہے مومنانہ اور تاجرانہ مزاج. تاجرانہ مزاج بھی ہے, تاجر ہر وقت نفع کے سودے دیکھتا رہتا ہے اور تلاش کرتا رہتا ہے, اور اسی طرح مومن ہر پل نفع کے سودے, قبولیت کی گھڑیاں اور نفع اور قبولیت کے لمحے تلاش کرتا رہتا ہے ہر پل. یہ مومنانہ اور تاجرانہ مزاج ہے, یہ اس طبیعت کا حصہ ہے. ہماری 20 رکعت میں یہ 3 وتر کی رکعت, 20 اور 23, 4 فرضوں کی رکعت, کتنی 27 رکعت تو باجماعت پڑھتے ہیں, 27 رکعت تو باجماعت ہم پڑھتے ہیں. اب خود سوچیں کہ ان 27 باجماعت رکعتوں میں اگر ہر سورۃ فاتحہ کے اختتام پہ ہم آمین کا اہتمام کریں اور اس لمحے آمین دل میں کہہ دیں, تو 27 دفعہ آمین تو ہم نے روز کہی, اور ہماری تو ایک آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو ہماری 7 نسلوں کے کام بن جائے. وہ کریم تو ایک قطرہ دے دے تو ہماری نسلوں میں تونگری, عزت, دولت, صحت, خوشیاں, خوشحالیاں, کامیابیاں, راحتیں مل جائے, اور ادھر وہ جو ایک قطرہ اور ادھر 27 بار آمین ہماری فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل رہی. اور پھر یاد رکھیے گا, یہ جو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین مل رہی ہے, یہ نسلوں کے لیے رحمتیں آ رہی ہیں. آج ظہر کی تعلیم میں مولانا بتا رہے تھے نا, کون سے عمل ایسے ہیں جس میں لعنت ہے اللہ کی, فرشتوں کی, اس سارے انسانوں کی. پیشاب پخانے کو جگہ صحیح جگہ نہ کرنا, آپ تعلیم میں سن رہے تھے, اور یہ لعنتیں منتقل ہوتی ہیں, بعض اوقات نسلوں میں چلتی ہیں. اسی طرح جو آمین ہے, اس آمین میں رحمت ہے, اور رحمت بھی فرشتوں کی رحمت نسلوں میں منتقل ہوتی ہے, اور فرشتوں کی رحمت رزق کی وسعت, صحت, راحت, برکت, شاندار حافظہ اور نسلوں میں برکتوں کا ذریعہ, یہ بھی منتقل ہوتی ہے, نسلوں میں منتقل ہوتی. یہ گھڑی ایسی گھڑی ہے, اس گھڑی کو تو کبھی ہم ضائع نہ کریں. 27 بار تو ہم نے سمجھنے عشاء میں کی ہے, رمضان میں 27 بار عشاء میں. اچھا, ہماری جہری رکعتیں 3 مغرب کی ہوتی ہیں, 2 ہوتی ہیں, 27 اور 2 جس میں قرأت ہوتی ہے نا, اور 2 فجر کی, 31 بار تو امام رمضان میں امام سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور 31 بار ہمیں کہنے کا موقع ملتا ہے. اور پورے رمضان میں کتنی دفعہ ہو گیا, یہ ایک دن میں 31 دفعہ ہے, اور پورے رمضان کے اگر 30 روزے ہیں تو کتنی دفعہ ہوا, اللہ اکبر, 930 بار. 930 बार कितना खुशकिस्मत इंसान है जो 930 बार फरिश्तों की आमीन के साथ अपनी आमीन शामिल कर ले और फरिश्तों की आमीन ले ले और झोलियां भर ले। बड़े बड़े बुजुर्ग सुलहा नेक सल्फ सालेहीन औलिया इस तलाश में रहते थे, इस जुस्तजू में रहते थे कहां फरिश्ते आमीन के और हमारी आमीन भी साथ शामिल हो जाए। ये बड़े बड़े वफद जाते हैं उसमें बाजू का पात करने वाला एक होता है और दूसरे सुर के साथ सुर मिलाते हैं, कह रहे जी जनाब बिल्कुल ठीक है जो ये कह रहे हैं हम भी कह रहे हैं। ऐसे बात रखने वाला एक होता है और बाकी जो है वो उसके साथ उसकी गुफ्तगू में बस दो चार लफ्ज कह के हिस्सा बनते हैं। यकीन जानिए अगर फरिश्तों की आमीन के साथ, और फरिश्तों की तादाद नहीं बताई गई, फरिश्तों की तादाद नहीं बताई गई कि फरिश्तों की आमीन के साथ कितनी आमीन होगी। एक फरिश्ता है, लाखों फरिश्ते हैं, करोड़ों फरिश्ते हैं। और नमाज में क्या ख्याल है कौन से रहमत वाले फरिश्ते होंगे या जहन्नम वाले फरिश्ते होंगे, आप खुद सोचें। और फिर एक अनोखा एक राज बताऊं आज आपको, फरमाया जो शख्स फरिश्तों की नजरों में आ जाता है मुख्तलिफ इबादात की शक्लों में, फरिश्ते उसको पहचानते हैं, यही फरिश्ते आगे दरबान होंगे, यही फरिश्ते जन्नत में होंगे, यही फरिश्ते मौत के वक्त होंगे, यही फरिश्ते रूह कब्ज करेंगे, यही फरिश्ते जनाजे में होंगे और यही फरिश्ते जो है पुल सरात में और क्यामत के दिन होंगे। वो पहचानेंगे। हमारे एक दोस्त थे तो हमारे एक बाबा जी गए वहां हवेली में, तो उन्होंने उनका बड़ा एहतराम किया, प्यार मोहब्बत से एक खिला पिला के। छोटा तस्वीर खाने में ना लंगर खाना था, तो वहां वो बेचारे आए वहां हवेली से मारे कुटे, रमजान मुबारक में आके लेटे ना, तो जलाली बाबा ने कहा ओ भाई क्यों लेटे हो, चल यहां से उठ। कहने लगा यार देखता सही बाबे दी आके छाया के ना उमर लुकमान साहब का जलसा था, तो वो कारी हनीफ साहब थे मुल्तान वाले नबीना थे, तो वो ना आए। उन्होंने कहा हजरत उसने वादा किया था और नहीं आए, आके अक हो गया था आया हो गया ते तो नबीना समझ नहीं आई, बड़ी देर से आई। उन्हें कहा हजरत जलसे का टाइम दिया था देखें आया ही नहीं, तो मौल लुकमान साहब रहमतुल्लाह कि आग हो गया था आया हुआ था तो नबी ना आग थी ही नहीं। उन्हें कहा मुझे उन्होंने पहचाना नहीं सब कुछ, और मुझे कहा उठ उठ जाओ चल 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 इधर ना सो, जो आएगा इधर सोता जाता है, चलो जाओ तस्बीह गाने निकलो यहां। अच्छा उनकी अपनी मजबूरी, लंगर खाने वालों की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, जो भी आएगा लेटता गया तो फिर आप वो बंदे कहां करें, खाना किसको बिठा के खिलाएं, हर बंदा तो वहीं सोता गया। फरिश्ते नजर रखते हैं। मैं इस पे एक हदीस बकायदा हदीस सुनाता हूं, फरमाया कि जो बंदे सफों में तकबीर ओला अगली सफों में तकबीर ओला का इहतमाम करते हैं, हदीस सुनाता हूं आपको, मेरे पास इसका हवाला है, फरिश्ते ऐसे लोगों पे नजर रखते हैं, अगर वो बीमार हो जाएं तो उनकी इयादत को जाते हैं, और अगर वो बीमार हो जाएं तो उनकी इयादत को जाते हैं, और अगर उनका कोई काम हो मसला हो तो उनकी मुआवनत करते हैं, फरिश्ते मदद करते हैं, फरिश्ते उन लोगों को पहचान देते हैं। चलो पहचान, फरिश्तों की पहचान पर एक और हदीस का हवाला देता हूं। वैसे जो बंदा सुखी जिंदगी में अल्लाह को याद करता है, तो जब वो दुखी जिंदगी में अल्लाह को याद करता है तो फरिश्ते सिफारिश करते हैं और एक लफ्ज कहते हैं, ये अल्लाह की आवाज तो शनासा और पहचानी हुई थी, और जो सुखी जिंदगी में अल्लाह को भूल जाता है तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ना मानुष की आवाज है, कोई पहचानी हुई आवाज नजर नहीं आती। जो बंदा रोजाना 31 बार फरिश्तों को अपना तारुफ कराएगा, मैं भी हूं याद रखना, ख्याल करना, मेरी भी आमीन आपकी आमीन के साथ शामिल है। 31 दफा रोजाना आप एक बंदे को सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, 31 दफा रोजाना एक बंदे से तारुफ करें, तो मेरे ख्याल में कोई सख्त से सख्त मिजाज बंदा भी हो तो वो भी एक वक्त आएगा पहचानेगा, जी मैं आपको पहचानता हूं, आप हमारे मोहसिन हैं, आपसे हमारा राज और नियाज है, दोस्ती और ताल्लुक है। तो जिसकी फरिश्तों से दोस्ती हो जाए, जिसकी फरिश्तों से जिसका ताल्लुक बन जाए, अब सोचे तो सही उस बंदे की अजमत क्या होगी अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक कितना वसी होगा, और फिर वो दोस्ती भी हालत नमाज में हो, और दीन में सबसे पहले कलमे के बाद जो मेरे रब की पसंदीदा तरीन चीज है वो नमाज है। कलमे के बाद जो सबसे पसंदीदा तरीन इबादत है, बंदगी है, दुनिया का सबसे बड़ा निजाम वो नमाज में है, और ये बंदा हालत नमाज में अल्लाह से दोस्ती कर रहा, फरिश्तों से दोस्ती कर रहा, और फरिश्तों के साथ ताल्लुक निभा रहा, बना रहा, इससे बड़ा दुनिया का खुशकिस्मत इंसान कोई है तो बता दे। और ये फरिश्ते फिर इसका साथी बन जाते हैं। देखो बात सुनो, मौत के वक्त फरिश्ते ही होंगे, सुलहा फरिश्ते होंगे जो जन्नत का जरिया, और मौत के वक्त फरिश्ते होंगे जो कलमा आखिरी वक्त में, और वो रैहान के गुलदस्ते लाएंगे और नाक के सामने करेंगे मुंह के सामने, और इंसान की तबीयत में बेचैनी, बेकली, बेकरारी होगी, और सांस भड़कने लगेगी और पिंजरे से सांस निकलेगी। फरिश्ते ही तो होंगे, और अल्लाह के हम फरिश्ते ही लेकर जाएंगे, और फरिश्ते ही होंगे जो अल्लाह के हुजूर जाके सफारशी बनेंगे। और बताऊं आज के इस महफिल में फरिश्ते ही बैठे हैं, जहां अल्लाह का जिक्र होता है हदीस मुबारका में है वहां फरिश्ते आते हैं, जमा होते हैं, हत्ता के हदीस में अल्फाज यहां तक हैं, एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को आवाज देता है, आओ आओ जिन मजालिस महाफिल को तलाश करते थे, तुम्हारा मतलूब तुम्हें मिल गया, आओ इधर आओ। फिर फरिश्ते जमा होते हैं, हमारी सफें यूं बनती हैं जैसे बनी हुई हैं, और फरिश्तों की कतारें ऊपर बनते 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 आसमानों तक फरिश्तों की कतारें चली जाती हैं। और जब ये महफिल खत्म होती है तो अल्लाह के हुजूर जाके पूछते हैं, कहां से आए या अल्लाह? ऐसी जगह से जहां तेरे बंदे जिक्र करते थे, और फिर मगफरत के परवाने मिलते हैं। यही फरिश्ते ही जाके तो सिफारिश करते हैं। देखो बात सुनो, इन फरिश्तों से हमारा गुजारा इन्हीं के साथ है, हमारा गुजारा इन्हीं के साथ। मैं एक तारीख पढ़ रहा था, तारीख वो एक जो है वजीर था मुराद शाह, तो वो हर नई चीज का नाम कर्नल मिंचन के साथ रखता था। ये मिंचनाबाद उस दौर में कर्नल मिंचन था, 1866 की बात है, क्योंकि वो उस वक्त उसकी जरूरत थी कि अगर वो नीटो एजेंट जो है वो अंग्रेज का वो राजी है तो उसकी हुकूमत भी है, उसका इख्तदार भी है, उसका भी है, और अगर वो अंग्रेज नाराज है तो बस उसका क्या है, बाकी उसके पास है क्या, उसके पास तो था वही। तो वो नेहरू के नाम मिंचन के साथ रखता था, कोई शहर आबाद करना है तो मिंचन के साथ रखता था, मिंचन आबाद फला फला मिंचन वाह बड़ी नाम है। हमारा निजाम है ही फरिश्तों के साथ, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। दुनिया में वही रिस्क लाने वाले, वही फरियाद पहुंचाने वाले, वही अजाब को रुकवाने वाले, वही। अच्छा ये जो जादू जिन्नात का हमला होता है, ये फरिश्ते ही आते हैं इर्द गिर्द, भाई आप जो वजीफा पढ़ते हैं उस वजीफे के जरिए अल्लाह फरिश्ते भेजते और कहते हैं दीवार लगा के खड़े हो जाओ, इनकी भेजे हुए अजाब जो कि जादू जिन्नात नजरे बद की शक्ल में है इन्हीं पे लौटा दो। फरिश्ते ही तो होते हैं, तो फरिश्तों के बगैर हमारा गुजारा कहां है। सोचें, हमारा तो पल पल वास्ता ही फरिश्तों के साथ है, फरिश्तों के साथ। ये जो तूफान है ना, बगोले बगोले, ये शैतानी जिन्नाती चीजें इनको लेकर चलती हैं। बड़े बड़े बगोले आते हैं और इमारतों को उड़ा के ले जाते हैं, गाड़ियों को, ट्रैक्टरों को, बसों को, हर चीज को बर्बाद कर देते हैं बगोले। ये जिन्नाती शैतानी चीजें होती हैं। ये मुहद्दिसीन की बातें अर्ज कर रहा हूं, किताबों में मौजूद है। इनकी हिफाजत सिर्फ और सिर्फ वो फरिश्तों के जरिए होती है, और अल्लाह फरिश्ते भेजता है। आप जो तस्बीह पढ़ते हैं, उस तस्बीह से अल्लाह की रहमत जो आती है वो फरिश्तों के जरिए आती है, अल्लाह की जो मदद आती है फरिश्तों के जरिए आती है। और गज़वे बदर में जो हजारों फरिश्ते या सैकड़ों फरिश्ते आए थे, वह फरिश्ते ही तो थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक बंदा ले आया, और वो हजरत अब्बास जिनका कद और जिनकी आवाज, घोड़े पे बैठते थे तो पांव नीचे लगते थे, आवाज उनकी मीलों दूर जाती थी, और जवान थे। और दो सहाबा ले आए गज़वे बदर में, कैदी बना के उन्हें कहना ये नहीं पकड़ सकते मुझे, कुछ ताकतें थी जिन्होंने उनको बांध के पकड़ के मुझे दे दिया था। हमारे तो पल पल में हमारे साथ फरिश्ते हैं, तो क्यों ना हम फरिश्तों से राह रस्म बढ़ाएं, हेलो हाय करें, अभी से सिलसिला शुरू करें। उनके बगैर गुजारा ही नहीं है, गुजारा उनके बगैर है ही नहीं। तो उनके बगैर गुजारा नहीं है, तुम नमाज में उनके साथ अपनी अपनी जो है वो सुर मिलाएं, अपना आमीन मिलाएं उनकी नमाज के साथ, और बड़ी कबूलियत की घड़ी, और जो मांगो सो मिले, जो चाहो वो अता हो, बरकत, राहत, रहमत, खुशियां, खुशहालियां, इज्जतें, शान शौकतें, खैरें और बरकतें, जो चाहे मिले, हर नेमत मिले, हर राहत मिले, हर बरकत मिले। मेरा ख्याल में तो फरिश्तों के साथ हमारा इसके अलावा गुजारा है ही नहीं। क्या ख्याल है? मैं आज आ रहा था तो वहां पुल के ऊपर से सामने एक इमारत को आग लगी हुई थी, तो मैंने अपने साथियों से 11 दफा अल्लाह अकबर पढ़ के फूंके। हम ओवरब्रिज जो है कलमा चौक का गालिबान वही गुजर रहे थे, तो उसके सामने आग लगी हुई थी। मेरा प्रोग्राम, मैं अपना स्टूडियो से प्रोग्राम करके आ रहा था। अच्छा, मुझे अल्लाह अकबर मैंने कही, एकदम मुझे याद आया। पर मैं जब बंदा अल्लाह अकबर कहता है तो अल्लाह पाक अपनी अजमत फरिश्तों के साथ भेजते हैं और फरमाते हैं ये जो जिन्नाती शैतानी चीजों ने आग लगाई है, जाके इनको खत्म कर दो, क्योंकि शैतानी और जिन्नाती चीजें बनी आग से हैं, और ये आग हमेशा खत्म होती है अल्लाह के नाम की अजमत से। और अल्लाह के नाम की अजमत के अंदर फरिश्तों की फौजों की फौजें हैं, और यही फरिश्ते सलातो सलाम बारगाह रिसालत पे पेश करते हैं, और यही फरिश्ते रौज़ा अथर में जाके जाते हैं। फरिश्तों के साथ हमारी मोहब्बतें हैं, और बाज ऐसे अल्लाह वाले हैं उनको फरिश्ते नजर आते हैं, जीती जागती आंखों से फरिश्ते नजर आते हैं, फरिश्ते नजर आते हैं, मौजूद होते हैं। बाज ऐसे हैं जिनको जिन्नात नजर आते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको जिन्नात नजर आते हैं, बहुत कम ऐसे भी हैं जिनको फरिश्ते नजर आते हैं। और फरिश्ते जिन्नात बकायदा कुछ चीजें बताते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये चीज कर लें, ये चीज कर लें, बकायदा फरिश्ते बताते हैं। और जिन्नात बताते हैं, मैं भी हमारे यहां हमारे मुल्क के मायनाज एक शख्सियत थे शोरिश कश्मीरी, तो उनके बेटे हैं अभी सामने बैठे हुए हैं, तो यहां तस्बीह खाने में मैं अभी मगरिब की नमाज के बाद उनके पास बैठा था, मुझे अपनी तकलीफें बता रहे थे। जो मुझे कहने लगे मुझे बवासीर भी है, मैंने कहा आपके वालिद को भी थी? कहने लगा हाँ हाँ थी। मैंने कहा आपके वालिद 1952 में मेरे दादा के पास वहां दवाई लेने गए थे और वो ठीक भी हो गए थे। और फिर उन्होंने उस दौर के चट्टान में, वो मेरे पास पड़ा हुआ चट्टान, पूरी नजम लिखी थी और पूरा हवाला दिया था। तो मैंने कहा लगता है आपको ये बीमारी मौरूसी है, बस बीमारियां मौरूसी। अच्छा वो जो दवाई देते थे, मैं वो दवाई भी बता दूं आपको, वो जो दवाई देते थे उन्हें एक जिन ने बताई थी, मेरे दादा रहमतुल्लाह बवासीर की दवाई और भी दवाइयां थोड़ी बहुत देते थे, और वो एक उन्हें जिन ने बताई थी, बहुत तिलावत करते थे। वहां एक मस्जिद है जामे मस्जिद, वहां बहुत पुरानी मस्जिद है, बड़े बड़े मीनार हैं, और वहां के जिन्नात सुलहा औलिया जिन्नात मशहूर हैं। फरमाते थे कि दिन में वहां 3 दफा जाके मेरे दादा, 2 दफा, 1 दफा घर पढ़ते थे, 2 दफा वहां, दिन में 3 दफा कुरान पढ़ते थे। तो वहां फरमाते थे मैं इस तरफ के मीनार के नीचे जो है वहां मैं कुरान पढ़ता था अंदर कमरे में। तो एक दफा एक बाबा जी मेरे साथ आके बैठ गए, ये उनकी याददाश्तों में बात लिखी हुई, और अपने घर वालों से भी मैंने सुनी। तो एक बाबा जी आके बैठ गए, कहने लगे हाजी साहब आप कुरान पढ़ते हैं बड़ा अच्छा लगता है, आप बहुत जबरदस्त कुरान पढ़ते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, आपको एक तोहफा देते हैं। उन्हें चीज दे दें, किस चीज के लिए? कहा किसी को अगर तकलीफ बवासीर हो इसके लिए आपको तोहफा देते हैं, त्रिपला और सर्स के बीच ये आपको देते हैं, ये पीस के लोगों को पूड़ियां दे दिया करें, लोग ठीक हो जाएंगे। त्रिपला, आमला हरड़ और बहेड़ा, इसे त्रिपला कहते हैं, और सरस के बीज, तुख्मे सरस जिसे शरी का दरख्त भी कहते हैं, सरस के बीज यह हम मजन ले लें, इसको बारीक पीस लें, इसकी छोटी सी पुड़िया बना लें, और यह पुड़िया जो है दिन में 2-3-4 दफा लोगों को दे दें। वो शोरिश कश्मीरी मरहूम को तकलीफ थी, वहां गए उसमें रियासत भावलपुर में, तो किसी ने बताया कि एक फकीर हैं, दरवेश हैं, वो दवाई देते हैं, उनके पास आए और वो उन्होंने दवाई इस्तेमाल की। तो उस दौर के फिर चट्टान में बकायदा उन्होंने, चट्टान का एक दौर था, चट्टान का एक गलगला था, चट्टान का एक नाम था। तो अभी उनके बेटे मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं यही बात उनसे अर्ज कर रहा था कि आपको भी लगता है कि वो मौरूसी तकलीफ है। अच्छा उनकी दोस्ती किस वजह से हुई? कुरान की वजह से। तो आपकी फरिश्तों से दोस्ती हो जाए आमीन की वजह से, नहीं चाहते हैं? पक्की बात है, आज के बाद कुरान पे तवज्जो करेंगे। अच्छा यह होगा उस वक्त जब तवज्जो करेंगे, फस्तमिउ लहू व अनसितु, यह होगा उस वक्त जब तवज्जो करेंगे, जब तवज्जो करेंगे ना उस पे अल्लाह पाक अपने गैब के खजाने से, तवज्जो करेंगे गैब के खजाने से, फरिश्तों का कुर्ब अता करेंगे, फरिश्तों का ताल्लुक अता करेंगे। ऐसे लोगों से फिर फरिश्ते मुसाफा करते हैं, ऐसे लोगों से फरिश्ते मुआनका करते हैं, ऐसे लोगों से फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, और ऐसे लोगों से फरिश्ते ताल्लुक निभाते भी हैं, बनाते भी हैं। और चूंकि नूरी मखलूक है, इनमें दगा है ही नहीं, फरेब है ही नहीं, वादा खिलाफी मुमकिन ही नहीं। तो मेरे ख्याल में तो एक सूरत फातिहा के बाद आमीन से हमारा फरिश्तों से कितना बड़ा ताल्लुक बन सकता है। दिल ही दिल में आमीन कह दे और इंतजार में रहे कि मैंने आमीन कहना है, और सारा दिन में जैसे लोगों को जाके फिक्र होती है कि मस्जिद नबवी शरीफ में मैंने 40 नमाजें पूरी करनी है, चलो एक अच्छी आदत है, इसी तरह मेरी फिक्र हो कि आज के पूरे दिन में मैंने 31 बार गिना, 31 बार सूरत फातिहा के बाद आमीन पूरी करनी है। क्या ख्याल? और कितना थोड़ा छोटा सा अमल है, पर इस छोटे से अमल में अगर हमारी फरिश्तों से दोस्ती हो गई, हमारा तो काम बन गया, हमारे तो मसले हल हो गए, हमारी तो मुश्किल दूर हो गई। और बड़े बड़े तस्बीहां वजीफे करने के बाद जो फरिश्तों के साथ कुर्ब होता है, और उन फरिश्तों की वजह से, फरिश्तों के जरिए से अल्लाह की मदद आती है, और फरिश्ते जो हैं अल्लाह भेज देता है भाई बदर में अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, तो क्या ख्याल है, अमल छोटा सा है इसकी तासीर बड़ी है, अमल छोटा सा है पर इसकी ताकत बड़ी है, और दुनिया आखिरत की खैरें और बरकतें इस अमल से मिलेंगी। आज के बाद फैसला हो गया, कोई नामुमकिन चीज तो नहीं है, पक्की बात। अच्छा, इससे पहले हमने कोई तवज्जो करते तो हैं लेकिन इतनी नहीं की। उम्मीद है कि आज जो ये मजमून जो बंदा सुन लेगा वो फरिश्तों की आमीन के साथ अपनी आमीन इंशाल्लाह मिला के रहेगा, सारे इंशाल्लाह। वकफा बिल्लाह वलीयम वकफा बिल्लाह। आज हमने ये इस कुरान की तिलावत में सुनी, अल्लाहु आलम बेअदाइकुम वकफ। आज की कुरान की तिलावत में हमने ये सुनी है ये आयत, वकफा बिल्लाह वलीयम वकफा बिल्लाह नसीरा। और कभी इसके भी फायदे बताऊंगा, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, استغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك امين امين برحمتك। جی کوئی سوال آپ کا، آج تو سوال کریں گے، جی وہیں کھڑے کھڑے نہیں، बड़ा आपका सवाल किया पठान ने, बड़ा मुश्किल सवाल। पता है क्या सवाल किया बताऊं? कहते इल्म लदुनी और तय्यो लार्ज के लिए कोई वजीफा बताएं। वो अजीब सवाल है, बैठे मैं बताता हूं। पहले एक सवाल तो अलग से नीचे उतरे, भाई पानी पिलाओ जल्दी करो, ये तो सवाल ही ऐसा है ना। अच्छा जी, इसका जवाब आप दें। इल्म लदुन्नी और तय्युल अर्द, इसके लिए कोई वजीफा बता दो, आप बताएंगे। हाँ जी बताएं, इल्म लदुन्नी और तय्युल अर्द के लिए कोई अमल आपके तजर्बे में आया? कहते हैं तय्युल अर्ज के लिए पांच सूरतें छह बिस्मिल्लाह के साथ। आपको इसका तजर्बा कैसे है, मतलब आपके पास इसकी क्या दलील है? कहते हैं शॉर्ट टाइम में बड़ा सफर हो जाता है और आसानी से। कहते हैं बाजू का रोड ब्लॉक है, लंबी लंबी लाइनें लगी, हमें रास्ता मिलता है छह बिस्मिल्लाह पांच सूरतें जो मसनून अमल है। अच्छा, और किसी का मुशाहदा इस ज़मन में? जी आपने उसको आजमाया? कहते आपने रूहानी क्लास में हरूफ तहज्जी 129 दफा पढ़ने में तय्युल अर्ज है, और किसी का मुशाहदा तय्युल अर्ज और इल्म लदुन्नी? हाँ, अपना क्या किया? अल्लाह की इताअत अगर करें तो साला इल्म लदुन्नी है, और किसी का मुशाहदा? अच्छा, हम ना सवाल भी अपने और जवाब भी अपने मिलके चलेंगे, इससे फायदा होता है। देखें इस वक्त तो बात तशरीफ रखें, मेरी अर्ज है इस वक्त ये सवाल और चल रहा, इस वक्त तो सवाल और चल रहा। हाँ जी, और किसी का? कोई से मन में कोई जवाब किसी का हो तो सोचें, जरूर दें। कम से कम पांच बंदे इस मन में मुझे जवाब दें, पांच बंदे सोच समझ कर धोखा ना करें। बोले इल्म लदुनी और तयुल अर्ज, ये कैसे हासिल हो? हमारे औलिया बुजुर्ग बड़े बड़े उनको ये बात चीज हासिल थी, बताएंगे। बोले अगर आप बोलेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे, वरना यहीं से कर नीचे चले जाएंगे। देखें एक दूसरे से सीखते सिखाते हम चलें। आपके लिए स्पेशल वक्त मैं अर्ज कर रहा हूं, ये सवालों जवाब की निशस्त है। इल्म लदुन्नी गैबी इल्म और तय्युल अर्ज, बताएं किसी के पास इसका राज हो तो बताएं, कोई नुक्ता हो तो बताएं। हाँ जी हाँ, ये कहते हैं इल्म लदुन्नी के लिए जो दुआ है, सही कहा इन्होंने, या अलीम अल्लमनी या खबीर अखबिरनी या वहाब हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा। ये दुआ बहुत जबरदस्त है, इल्म लदुन्नी के लिए यानी गैबी इल्म हासिल करने के लिए। ऐसे उलूम है जो किसी किताब में नहीं, किसी सीने में नहीं, किसी जुबान में नहीं, किसी वर्क में नहीं, किसी कलम में नहीं, कहीं नहीं। अल्लाह वो गैब के खजाने से अता फरमाए। बहुत से वज़ाइफ में है लेकिन इसमें भी है जो मैंने आपसे अभी अर्ज किया। और किस चीज का फायदा होता है? कहते हैं असर की नमाज के बाद ला युजल्ली हले वक्त है इल्ला हो। कहते हैं मैंने जब ये असर के बाद शुरू किया तो मेरे ऊपर बहुत सी चीजें खुलना शुरू हो गए और बहुत सी चीजें, बहुत से राज और नियाज मेरे ऊपर उकदे खुलना शुरू हो गए। ला युजल्ली हले वक्त है इल्ला हो, बहुत सी चीजें मेरे ऊपर खुली, बहुत सी चीजें खुली। और तीन बंदे रह गए बाकी जी। ये आयत मुबारक आपके तजर्बे में भी है? कह रहे बहुत सी चीजें तहज्जुद के वक्त ख्वाब की शक्ल में होती हैं और दिन को वो सच साबित हो जाती हैं और हकीकत साबित हो जाती है। असर की नमाज के बाद सांस रोक के सिर्फ ये आयत पढ़ना ला युजल्ली हले वक्त है इल्ला हु, बस इतनी दफा पढ़ सके। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा, एक सांस में जितनी दफा हो सके बस वजीफा हो गया, पर इसके वाकई राज खुलते हैं जी। और हाँ जी बोले भाई। अच्छा जी अगला सवाल किसी का जी। घर में जादू का असर है, बहनें बीमार हैं, जिन्नात का असर है, जादू की वजह से घर में बीमारी है। हाँ जी इसका जवाब देंगे, इसका जवाब दें, इसका इलाज बताएं। या कहारो 1100 दफा वाला फिर 11 दफा दरूद शरीफ के साथ पढ़ें, पानी में पांव रख के, जादू का इलाज है। कहते अजान और अफहसिबतुम का वजीफा अगर पढ़ें तो जादू और जिन्नात का इलाज है। 625 दफा ये अपना मुशाहदा बताते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल आखिर दरूद पाक, جادو اور جنات کا علاج ہے. اور آج میں اپنی طرف سے ایک اور اضافہ بھی بتاتا جاؤں, سدا یاد رکھیے گا اور نسلوں کو بتائیے گا, جو وظیفہ جادو کے لیے ہے, جو وظیفہ جنات کے لیے ہے, وہی وظیفہ گناہوں سے نکلنے اور نیٹ کی غلاظتوں سے نکلنے کے لیے ہے. کیونکہ یہ بھی ایک جنات اور شیاطین کا جادو ہے, وہی وظیفہ وہاں کام کرتا ہے, وہی تسبیح وہیں کام کرتی ہے. ٹھیک, اور سوال کسی کا؟ ایک سوال سب کو موقع دیں. جی آپ پہلے کھڑے ہوئے تھے. ہاں ان کا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے, مسئلہ اٹکا ہوا ہے بھائی. کسی کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو, پھنسا ہوا ہو, تو اس کے لیے کیا وظیفہ ہو؟ کوئی چیز ایسی ہے جو ممکن نہیں ہو رہی, اس کو ممکن بنانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, یہ پڑھنا چاہیے. سورۃ المومنون کی آخری چار آیات پڑھیں, مسئلہ اٹکا ہوا بھٹکا ہوا اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. یا قادرو یا نافعو کہتے ہیں, اگر پڑھیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. قرآن پاک کی ہر لائن پہ نستغفرو کا ونتوبو الیک اگر انگلی پھیرتے ہوئے پڑھیں تو بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. قرآن پاک پہ غلاف چڑھائیں تو بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سورۃ وضحا میں 9 دفعہ کاف آتی ہے, ہر کاف پہ یا کریم 9 بار پڑھیں, یہ عمل کریں تو بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سارے مل کے 1,25,000 دفعہ آیت کریمہ پڑھیں, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جی اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون, اگر یہ ایک تسبیح پڑھیں ہر نماز کے بعد تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سورۃ یاسین پڑھیں ہر مبین پر 7 بار, سورۃ فاتحہ پڑھیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. 81 بار مل کے سورۃ یاسین پڑھیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد رب انی مغلوبا فانتصر 101 بار پڑھیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جی کہتے ہیں نماز عشاء کے بعد 12,000 دفعہ والا وہ عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, جس طرح جس میں 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پھر 1,000 بار بسم اللہ. ہر بگڑا ہوا کام ہو جاتا ہے, جادو کے اثرات جو بھی پریشانی ہے حل ہو جاتی. ٹھیک ہے, یہ عمل 3 راتیں کرنا ہے. اچھا بھائی چلو اس 3 راتوں کے عمل میں کوئی ایسا مجاہد ہے ایسا جو 3 رات یہ عمل کرے اور تسبیح خانے کے لیے کرے؟ صرف 11 بندے چاہیے مجھے, ہاتھ نہیں کھڑا کراؤں گا. 11 بندے ہوں مجھے تسبیح خانے کے نظام کے لیے اللہ کی مدد چاہیے، بس یہاں کی ضروریات، میں کچھ پریشان رہتا ہوں، یہاں کا نظام، یہاں ہر فتنے سے اللہ میری اور میری نسلوں کی حفاظت کرے، اس کے لیے مجھے مجاہد چاہیے، اور یہ میرا چندہ سمجھ لیں، کمیشن سمجھ لیں، مجبوری سمجھ لیں، جیب خرچ سمجھ لیں، پیر صاحب کا نذرانہ سمجھ لیں، لفافہ سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھے، اور کرے گا وہ جو عاشق ہوگا، پاگل دیوانہ۔ سچی بات ہے، میں دعویٰ تو نہیں کرتا، پر اپنے مرشد کے لیے میں پاگل تھا، دیوانہ تھا۔ ابھی بھی رات پر سوتے وقت ایک دم میرے مرشد کی مخصوص آواز آتی، طارق، نیند کھل جاتی ہے، ادھر دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں طارق، تیرا خیال تھا۔ مجھے ایک بوڑھی عورت کہنے لگی، بوڑھی خاتون کہنے لگی، میری ساس اتنی سخت مزاج کی تھی، اب میں پوتے پوتوں والی ہو گئی ہوں، بعض اوقات ساس کا تصور آتا ہے تو اٹھ کے نیند سے جھٹکا لگتا ہے، پھر تو کہتا ہوں سات کو تو فوت ہو گئے، 28 سال ہو گئے، اس کے مزاج کی سختی اور تلخی اتنی تھی۔ تو کوئی اگر عاشق دیوانہ، سر پھرا پاگل، یہ تین راتوں کا عمل کر لے میری اور میری نسلوں کے لیے اور تسبیح خانے کے لیے، میں اس کا مشکور ہوں گا، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ وہ عمل کر کے نا، اپنا نام، مکمل پتہ، موبائل نمبر، ہمارا یہ ایک باکس ہے جہاں ہم خط ڈالتے ہیں، یہاں وہاں دواخانے میں ہے نا، دواخانے میں، یہاں بھی ٹیم کھڑا ہے، ریسپشن کے ساتھ ایک ٹیم ہے نا، جس میں تجاویز اور شکایتیں لفٹ کے ساتھ ہے، لفٹ کے ساتھ ہے نا، اس میں ڈال دے، اس ٹیم میں ڈالنا ہے اور کہیں نہیں ڈالنا، اور صرف وہ ڈالے جو کرے، نام، تمام موبائل نمبر، پتہ کہ جی میں نے مرشد آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے اور تسبیح خانے کے لیے تین راتوں کا یہ عمل کیا ہے، پر کیا گڑ گڑا کے ہے، بھکاری بن کے ہے، محتاج بن کے ہے، منگتا بن کے ہے، مجھے صرف 11 بندے ایسے چاہیے جو یہ تین راتوں کا عمل کریں۔ ہو گئے؟ ہاتھ کھڑا نہ کرنا، عشق والے، پاگل، دیوانے، جن کو لگ جائے لگ جائے۔ اگر رات کو وہ عمل بالفرض پورا نہ ہو سکے، دن کے کسی لمحے مزید پورا کر لے، تین ساڑھے تین گھنٹے لگتے ہیں، تراویاں ختم ہوں تو یہ اگر کر لے، یقین کے ساتھ تو ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، جادو جنات کا ابھی جواب ملا آپ کو؟ دیکھیے، میری عرض سنے، میری عرض سنے، سارے مجمع سے ایک درخواست کروں گا، ہر بندہ کہتا ہے پہلے میری سنو، میں کہتا ہوں ایک کا سوال سب کا جواب ہے، سچ ہے، کیا خیال ہے؟ ہم سارا رمضان ایسے ہی چلیں گے، ایک کا سوال اور سب کا جواب۔ اگر ایک کا سوال ہوا اور ایک کا جواب ہوا، کیا سب کا جواب ہو سکے گا؟ سوچیں، ابھی جادو اور جنات کے لیے ہم نے وظیفے پوچھے، کیوں بھائی، کسی نے بتایا؟ سب نے بتایا نہیں بتایا، وہی جواب ہے۔ ہاں جی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ نہیں سن سکا، کیا بتا رہے ہیں؟ اچھا چلو جی، آج دوپہر کا موسم کیسا رہا؟ ٹھنڈا ہے؟ میں آیا نا یہاں، मैंने कहा ये धुआं कहां से आ गया, धूल उड़ रही है, झाड़ू दो एहतियात से। मैं कही बाबा धूल नहीं है, ये धुंध है, फोक है, ये जो एक दोस्त कहने लगे बता रहा था मैं मरी में आ गया हूं, और मरी भी वो जो ऊपर वाली मरी नथिया गली से, वो ऊपर वाली। कैसा मौसम रहा दोपहर का, हैं हैं ठंडक बेहतरीन, बाहर लू का कोई आपको एहसास तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। अभी भी मुझे सूरत कुलवल्ला वाला बिस्मिल्लाह वाला अमल भी नहीं, अभी भी नहीं देते। मुंह खावे थे आप शर्मावे वास से जानते रे बात है, मुंह खावे आख शर्मावे जी। ठीक सुन लिए भाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप जी। कहते हैं मुझे सूरत इखलास का इल्म चाहिए, सूरत इखलास का इल्म चाहिए, बताएं मैं कैसे मिलेगा? सूरत इखलास का इल्म चाहिए, बोलो भाई। सूरत इखलास का इल्म चाहिए भाई। क्या नाम है आपका? इरफान रिजवान। तो मैं कौन देगा भाई इल्म, पहले मुझे दे दें फिर मैं इसको दे दूं। सूरत इखलास का इल्म बताएंगे, कहते हैं 40 दिन में सवा लाख पूरा करें। कहते हैं मैंने 12 लाख दफा पढ़ी हुई है। मैं एक वाक्य सुनाऊं, वाक्य सुनाऊं। अब जाके वो अहमद के साथ बैठ जाओ। अहमद कहां बैठा हुआ है वो? अच्छा वो जाओ भाई वहां जाके बैठ जाओ। ये मेरे पास में मेरी तरफ देखना जरा, मेरी तरफ देखो। हमारे एक साथी था, उस छोटे से कद का था, उसको मोमी कहते थे, मोमी। मेरे पास आया, कहने लगे मुर्शिद मेरे पास एक बंदा है, उसने एक वजीफा किया है, बहुत बड़ा वजीफा किया है, इतना वजीफा किया, इतना जबरदस्त वजीफा किया, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो आपको बताना चाहता है। अच्छा मैंने कहा ठीक है उसको ले आना। अब दोनों बैठे थे, जब उनकी बारी आई ना तो पहले मेरे पास आया, फिर कहने लगा मुर्शिद एक साथी है मेरा, पर दोस्त है, बहुत बड़ा वजीफा किया उसने, बहुत बड़ा, इतना वजीफा, इतना इस तरह किसी का। वो बैठा हुआ सामने, तो मैंने कहा उसको ले आओ। अब वो सामने आया ना, तो मैंने उसको कहा बताओ। वो कहने लगे कि उसने इधर देखा, भाई कोई सुन तो नहीं रहा, इधर देखा। मैंने कहा कोई नहीं, बात बयान करो जल्दी करो। उसने मेरे कान में कहा मैंने 11 दफा सूरत कुलवल्ला पढ़ी। मुझे उसने इतना तजस्सुस पैदा किया, इतना कान में सरगोशी करे, उसने ना बहुत बड़ा वजीफा किया है, बहुत बड़ा। मैंने पूछा तो बोलो, कह रहे बहुत बड़ा वजीफा किया, बहुत इतना किया है मुर्शिद, इतना किया है, इतना किया। और बंदा आपसे मिलना चाहता है, कह रहे मैं बताऊंगा तो सिर्फ उन्हें बताऊंगा, चलो भाई आ जाओ। अब वो फिर इधर देखे, कभी इधर देखे, मैंने कहा कोई नहीं सुन रहा बता तो सही। कहने लगा उसने 11 दफा सूरत कुल अल्लाह पढ़ी। अल्लाह, ये कहते हैं 1.25 लाख, वो कहते मैं 12 लाख पढ़ चुका हूं। इस पे मुझे याद आई बात, इस पे मुझे याद आई। भाई सूरत इखलास का इल्म, सब कुछ अल्लाह समद में है, और अल्लाह समद में नुक्ता नहीं, लफ्ज अल्लाह में नुक्ता नहीं, उस समद में नुक्ता नहीं, हरूफ सवामित हैं, ये हरूफ सवामित हैं, हरूफ सवामित है, इसमें नुक्ता नहीं। एक साथ होती है जी, मैं थोड़ी सी अर्ज कर रहा था अगर इजाजत दे। एक साथ होती है साथ, अल्लाह ने साथों के साथ बहुत ज्यादा खैरें रखी, एक साथ होती है। बस ये आखिरी सवाल है, उसके बाद आपको आराम का वक्त दूंगा, फिर कल इंशाल्लाह हम नशिश लगाएंगे। एक साथ होती है, वो साथ आती है रजब में, अभी गुजरा रजब, आप जरा वो दिन तलाश करें जिस दिन मैंने कहा था सारे हलवा और रोटी पकाओ, याद है वो दिन? मुझे कुछ तायुन करके बताए वो कौन सा दिन था। कल जो है ना उस तारीख को, उस दिन को सोच के आइएगा, किस किसने पकाया था, पकाया था ना, कल वो दिन और वो तारीख जरा सोच के आइएगा। आइंदा सवाल कल इंशाल्लाह, मुझे आपके आराम, आपकी सुकून का भी एहसास रहता है, आप मदीने वाले के मेहमान हैं, अल्लाह उसके रसूल के। वो दिन क्या है? उस दिन में बहुत बड़े अमल होते हैं, और वो मैंने हलवा रोटी अर्ज किया था कि उसके साथ किसी दिन का तायुन नहीं है, ये भी मैंने वजाहत कही थी कि कल को उसी दिन को पकाना शुरू कर दें, कोई दिन का तायुन नहीं। अगर दिन का तायुन कर लिया फिर बिदत बन जाएगी, समझ गए, फिर बिदत बन जाएगी, उसका कोई दिन का तायुन नहीं है। लेकिन उन्हीं दिनों में, उसी दिन में एक साथ थी, जिस साथ के अंदर हरूफ सवामित का इल्म खुलता है, एक बहुत बड़ा राज है, उसी साथ में हरूफ सवामित का इल्म खुलता है। अब मैं क्या बताऊं, इंशाल्लाह इसकी मैं तफसीलात फिर कल अर्ज करूंगा, ठीक है। अल्लाह पाक आपको जजाए खैर दे, मोहब्बत से चल रहे हैं। लिखा है कि कुछ साथी सोते बहुत ज्यादा हैं, फैसला कर लें कि 6 घंटे से ज्यादा मैंने नहीं सोना, और जो ये फैसला कर ले वो अपनी 11 मुरादें, 7 मुरादें या 3 मुरादें लिख ले। एक बुजुर्ग फरमाते हैं ये अमल कर लो, अगर पूरा ना हो तो आके मेरी कब्र में मुझसे पूछो, या मेरा क्यामत के दिन गिरेबान पकड़ना। मैं नहीं कहता, दावा नहीं करता, मैं वो बुजुर्ग नहीं हूं, ना बुजुर्ग हूं, बुजुर्गों को खादिम हूं, लेकिन जो बंदा तस्बीह खाने में आके जितनी नींद बढ़ाए बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, उससे बड़ा घाटा है कहीं नहीं, उससे बड़ा नुकसान है कहीं नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, जितना ज्यादा नींद बढ़ाते जाएं तो बढ़ती जाएगी। सुबह सोए, अभी सो गए, सुबह फजर के बाद सो गए, जोहर के बाद सो गए, असर के बाद सो गए, दिन में 4 दफा सोए, 3 दफा वाले कल तो थे, एक 4 दफा वाले भी थे, तो बहुत बड़े घाटे का काम है। نقصان آخری نقصان، تین راتوں کا عمل بارہ نفل کی ترتیب بتا دوں. ہاں جی کیا ہے ترتیب بتائیں کوئی؟ دو رکعت نماز نفل حاجت، بارہ دکانیں پڑھنے، بارہ دو رکعت نماز نفل پڑھا حاجت کے، اس کے بعد 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر 3 دفعہ درود شریف سخت تصور کے ساتھ، پھر 2 نفل پڑھیں، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 2 نفل پڑھیں، پھر 1000، اس طرح 12 نفل ہو گئے، ہاں 24 نفل، 12 دکانیں ہو گئے، اور 12000 بار سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو. یہ ہے ترکیب، دن رات میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے. اللہ باپ جزائے خیر دے، اللہ خیریں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک صدا خیریں عطا فرمائے. قلم کاغذ دے دے. کل کیا سوال ہوں گے ہمارے؟ ہاں جی جی کہتے ہیں کل سوال ہمارا ہوگا، جس کو نظر بد لگ گئی ہو اس کا کیا حل ہے؟ انشاءاللہ پھر کل اس پہ بات بھی کریں گے اور سوالوں کے جواب بھی دیں گے. ٹھیک ہے، اچھی بات. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ وبحمدہ.